सिद्धार्थ ने झलक का गला दबाना शुरू कर दिया था, लेकिन झलक पूरी तरह शांत थी। वो बिना कुछ बोले बस सिद्धार्थ की आंखों में देख रही थी, जैसे उसके अंदर चल रही हर सोच को पढ़ने की कोशिश कर रही हो, जैसे वो इंतजार कर रही हो कि अब वो अगला कदम क्या उठाने वाला है। अब झलक को कोई रिस्पॉन्स न करते हुए देखकर और ये देखकर कि उसके चेहरे पर पूरी तरह से खून जम सा गया है, उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है, लेकिन उसने एक बार भी छटपटाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, ये देखकर सिद्धार्थ का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। उसने तुरंत उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया और एक झटके के साथ उसकी गर्दन छोड़ दी। अनामिका तुरंत जाकर उसे संभालने लगी, लेकिन झलक तुरंत ही शांति से उठ खड़ी हुई। लेकिन तभी सिद्धार्थ उंगली उठाकर झलक को देखकर बोला था, तुमने ये क्या नया नाटक रचा है, क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों से वाकिफ हो चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है, ये नकली ड्रामा करके, नकली फैमिली क्रिएट करके, झूठी डीएनए रिपोर्ट बनवाकर तुम ये सारा नाटक कर सकती हो और अपने आप को सही साबित कर सकती हो? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हारे हर झूठ का पर्दाफाश करूंगा। और अब तक तुमने सिद्धार्थ खुराना का सिर्फ एक सॉफ्ट साइड देखा है, अब तुम सिद्धार्थ खुराना की बेरहमी देखोगी, इतनी बेरहमी कि तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी। ये कहते हुए सिद्धार्थ बहुत ही खतरनाक लग रहा था, लेकिन झलक ने बदले में एक छोटी सी स्माइल दी और अनामिका को देखकर बोली, क्या यार, तुमने पार्टी बंद क्यों कर दी? हमने यहाँ टिकट के पैसे दिए हैं, टिकट बुक की है इस जगह को, तो आज तो हम पार्टी यहीं करेंगे। ये बोलकर झलक ने जल्दी ही अनामिका को पार्टी जारी रखने के लिए कह दिया। वहीं सिद्धार्थ तुरंत ही झलक के पास गया, उसके कंधों से पकड़कर उसकी ओर देखकर बोला था, एक बात याद रखना, नाजायज लड़की। यहाँ पर जानबूझकर सिद्धार्थ ने झलक को नाजायज लड़की कहकर पुकारा था, क्योंकि वो जानता था कि झलक की मुस्कुराहट उसे जहर लग रही थी। अगर वो उसे उसके नाम से पुकारता तो शायद वो कोई रिएक्ट न करती, लेकिन अगर वो उसे नाजायज बोलता है तो वो रिएक्ट जरूर करेगी। तभी झलक ने लाल आंखों से सिद्धार्थ को देखा, क्योंकि उसे उस नाजायज शब्द से इतनी नफरत थी जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। जैसे ही झलक ने सिद्धार्थ को इस तरह देखा, उसे ऐसा लगा मानो उसकी कही हुई बात सच साबित हो गई हो, क्योंकि झलक को वाकई ये लहजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तभी सिद्धार्थ ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है, आकांक्षा ओबेरॉय और उसकी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार करके या फिर झूठे फिजिकल रिलेशन और मनमर्जी के रिश्ते की कहानी बनाकर तुम कुछ साबित कर सकती हो या मेरी और आकांक्षा की शादी तोड़वा सकती हो? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत जल्द सिद्धार्थ खुराना आकांक्षा ओबेरॉय से शादी करेगा, और जो तुमने पूरे समाज के सामने उसे बदनाम करने की कोशिश की है, उसके बदनामी का दाग एक ही पल में हटा देगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो लड़की अपने ही परिवार से बदला लेने के लिए अपने ही रिसेप्शन पार्टी वाले दिन अपना प्राइवेट वीडियो दुनिया के सामने चलवा सकती है, उससे घटिया लड़की कोई हो ही नहीं सकती। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम कितनी घटिया हो और अपने मतलब के लिए क्या क्या कर सकती हो, इसलिए तुम्हारा कोई भी दांव मुझ पर कभी नहीं चलेगा, और तुम्हारी ये गलतफहमी मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगा। तुम्हें लगता है तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अभी तक तुमने सिर्फ एक ही पारी खेली है, दूसरी पारी बाकी है, और दूसरी पारी कैसे खेली जाती है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जैसे ही सिद्धार्थ इस तरह की बातें करने लगा, कहीं ना कहीं झलक का चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस था। उसने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच रही थी, खासकर सिद्धार्थ की ये बात कि वो आकांक्षा ओबेरॉय से शादी करेगा, ये उसे अंदर तक चुभ गई थी। लेकिन अनामिका ने तुरंत आकर उसका हाथ पकड़ लिया था, जैसे वो इस सिचुएशन में उसे संभाल रही हो। तभी सिद्धार्थ तुरंत ही अपने आदमियों की ओर देखकर बोला, इस लड़की से कोई पैसे मत लेना, आखिर दुश्मन है ये, तो दुश्मन को इतनी इज्जत तो मिलनी ही चाहिए। इस नकली करोड़ों की मालिक को इतना तोहफा तो मिल ही सकता है कि ये एक रात सिद्धार्थ खुराना के क्लब में बिना पैसे दिए पार्टी कर सके। ये बोलकर सिद्धार्थ लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ तुरंत वहां से बाहर निकल गया और झलक और अनामिका को पूरी तरह हैरानी में छोड़ गया। वहीं अनामिका ने तुरंत झलक का हाथ पकड़ा और बोली, ये सब क्या था यार, हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? इस आदमी के अंदर कितना घमंड है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, तेरे सबूत, इतने गवाह, इतना सब कुछ देखने के बाद भी ये आदमी कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। ये जो सोच रहा है, जो समझना चाहता है, बस वही सोच रहा है। ओ गॉड यार, इसके जैसा घटिया आदमी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। कहीं ना कहीं इस वक्त अनामिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और तभी अनामिका ने झलक की गर्दन को नरमी से छुआ, क्योंकि झलक की गर्दन पर सिद्धार्थ की उंगलियों के निशान पूरी तरह से उभर चुके थे। उसकी गोरी बेदाग स्किन पर वे निशान किसी गहरे दाग की तरह साफ दिखाई दे रहे थे। उसके हाथ के पंजों के निशान भी उतने ही स्पष्ट और डरावने लग रहे थे। तभी झलक ने मायूस खड़ी अनामिका को देखकर बोला, ये सब छोड़ो, हम पार्टी करना चाहते थे ना, पहले बातें करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बाद में सोचेंगे। वैसे भी इस वक्त कोई जख्मी है, या फिर ये कहो जख्मी शेर है, और इस वक्त वो वाकई बहुत खतरनाक है, लेकिन उसका पहले भी जख्मी शेर से सामना हो चुका है, और जख्मी शेर से भी ज्यादा जख्मी शेरनी खतरनाक होती है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये कहते हुए झलक खुद को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश करने लगी थी। अब देर न करते हुए झलक ने अनामिका का हाथ पकड़ा और बोली, चलो फटाफट, अपना मूड स्पॉइल मत करो। धीरे धीरे सब लोग फिर से पार्टी करना शुरू करने लगे थे। वहीं दूसरी ओर आदित्य भले ही अपने होमटाउन लौट चुका था, लेकिन उसके दिल के हाल इस वक्त काफी ज्यादा अजीब थे। स्टेज पर जिस तरीके से झलक ने उसे किस करने के लिए बोला और उससे बातें की, उससे उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। तभी उसका दोस्त कबीर तुरंत बोला, क्या बात है यार, फाइटर भाभी के साथ क्या क्या किया तूने, क्योंकि जब से तू आया है केवट मुस्कुराया जा रहा है। असल में कबीर और अभय उसके साथ वहां नहीं गए थे, इसलिए वे कहीं ना कहीं आदित्य के मुंह से सारी बातें सुनना चाहते थे, या यूं कहो कि पूरी स्टोरी समझना चाहते थे कि आखिर वहां क्या क्या हुआ था। उनकी बातें सुनकर आदित्य का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। वो लोगों को बारी बारी से घूरते हुए बोला, जस्ट शट अप यार, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग, और तुम लोगों को इन बातों के अलावा कुछ और नहीं सूझता क्या। तभी उनके दादाजी वहां आए और आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मुबारक हो। ये सुनकर तो आदित्य हैरान रह गया, जबकि कबीर और अभय उछल कर बोले, क्या सगाई, ये क्या आदित्य राणा, सगाई कर ली और हमें बेचारे को बुलाना भी जरूरी नहीं समझा, ये सब क्या था भाई, क्या तुम वापस सगाई करके आए हो। ये सुनकर आदित्य ने घूर कर उन लोगों को देखा। तभी दादाजी ने अभय को घूरते हुए कहा, अरे बदमाश चुप कर, क्या ये जवान हो गया है तो इसे सगाई करने का कोई हक नहीं है, प्यार करने का कोई हक नहीं है। एक तुम लोग हो, एक तो बाल ब्रह्मचारी बनकर बैठा है और एक ने लड़कियों के मामले में पूरी PhD करके रखी है। पता नहीं हर गली नुक्कड़ कर इसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड या एक दिन की घूमने वाली गर्लफ्रेंड मिल ही जाती है। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, अभय का मुंह उतर गया। वो तुरंत कबीर को देखने लगा, फिर मायूसी से दादाजी को देखकर बोला, दादाजी मेरा इतना हैंडसम सा चेहरा है, लड़कियां मुझ पर फिसल जाती हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर, आखिर मैं इतना हैंडसम हूँ। क्या दादाजी आपको मुझे इस तरह जज नहीं करना चाहिए, और मैं जानता हूँ आप भी अपने जमाने में बहुत हैंडसम रहे होंगे, आपकी भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी, है ना।
जैसे ही अभय ने दादाजी की ओर देखकर ये कहा, दादाजी उसे घूरते हुए बोले, चुप कर, इस तरह की बातें मुझसे बिल्कुल मत कर, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर अभय का चेहरा और भी उतर गया। वहीं वो धीरे से कबीर के कान में बुदबुदाया, देखा कबीर भाई, बड़े होने के कितने फायदे हैं, जब मर्जी बच्चों को डांट दो। लेकिन तभी कबीर ने तुरंत आदित्य की ओर देखकर कहा, लेकिन आदित्य तुम फाइटर भाभी को लेकर क्यों नहीं आए, उन्हें वहीं छोड़कर आ गए। तभी आदित्य ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, क्योंकि अभी उसे अपने दुश्मनों से हिसाब लेना है, इसीलिए मैं उसे वहीं छोड़कर आ गया। आखिर क्या रंग लाएगा सिद्धार्थ की आंखों पर पड़ा पर्दा, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।